यमुना तीरा वनचारी
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक क्रमांक 8। अन्यथा कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजति अधा। अन्यथा कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजति अधा। अन्यथा कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यदा। अन्यथा कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो भ्रष्ट प्रज्ञो व्रजति अधा। अन्यथा कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यध। कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यध। शब्दार्थ माताजी। अन्यथा कर्म कुर्वानो मानारूढ़ो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजति अध। शब्दार्थ अन्यथा नहीं तो कर्म सकाम कर्म कुर्वान करते हुए मान आरूढ़ अभिमान के वशीभूत होकर निबध्यते फंस जाता है। गुण प्रवाह गुणों के प्रभाव से पतिता गिरा हुआ पतित नष्ट प्रज्ञ बुद्धि भ्रष्ट व्रजति जाता है अधः गर्त में नीचे। भाषांतर अन्यथा जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम जितना हो सके देखेंगे आज। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आज के इस सुबह के भागवतम कक्षा में आपका सबका स्वागत है। 30 मार्च 2019 को श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में इसी श्लोक के ऊपर श्रीमान राधेश्याम प्रभु ने प्रवचन दिया था, तो उसी प्रवचन का श्रवण करके मैंने कुछ नोट्स बनाया है। प्रभु जी बहुत सुंदर प्रवचन दिया और प्रभु जी सामने बैठे, तो हमारी परंपरा है कि हम प्रभुपाद जी से गुरु महाराज से और हमारे वरिष्ठों से हम सुनकर ही हम जो प्रवचन देने का प्रयास करते हैं, तो हम परंपरा में रहते हैं, तो हम परंपरा से हट नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। प्रभु जी थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ के उसके ऊपर कुछ वर्णन कर रहे थे। इस श्लोक में कई शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है अन्यथा नहीं, तो जो उसकी ओर संकेत करता है जिसे वैदिक विधि विधानों की परवाह नहीं रहती। वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान शास्त्र विधि कहलाते हैं। भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को स्वीकार नहीं करता है और मनमाना कार्य करता है अथवा मिथ्या गर्व से फुला रहता है, उसे इस जीवन में न तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है और न सुख अथवा भौतिकता से मुक्ति ही मिलती है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अमाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है न सुख अथवा परम धाम। तो यह श्लोक शुरू होता है अन्यथा। तो इसके पहले के श्लोक में बताया गया है कि नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्यत से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो जो शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। और इस श्लोक में क्या बोला है, अन्यथा, मतलब जो शास्त्र अनुमोदित कर्म नहीं करता उसके लिए क्या कहा गया है कि जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें सारी जानकारी देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि बताया गया कि श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण है, तो जीव को भगवान कृष्ण के पास या उनके पास जाने के लिए जो आवश्यक है वो श्रीमद् भागवत में सब तरह से दिया है, इसलिए इसे अमल पुराण कहा गया है। किसी प्रकार का मल इसमें नहीं है। तो मनमाना ढंग नहीं करना चाहिए, ये भगवान यहां पर वर्णन करते हैं। और करेंगे तो हम तीन गुणों में फंस जाएंगे। प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में फंस जाता है, समुद्र की जो लहरें उससे ऊपर नीचे जाता है, तो उसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर उधर अचानक कोई हेलीकॉप्टर आता है और उधर से कोई रोप, उसको क्या बोलते हैं, रज्जू, रस्सी अगर नीचे डाली जाती है और उसको पकड़ता है वो व्यक्ति जोर से, और वो हेलीकॉप्टर अगर ऊपर ऊपर जाता है तो फिर वो बच जाएगा। तो यहां पर जो समुद्र की लहरें हैं उसकी तुलना प्रकृति के तीन गुणों के साथ की गई है। हालांकि जीव शुद्ध है, सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है, लेकिन यहां पर वो भूल जाने के कारण, अज्ञान के कारण वो अपने आप को शक्तिहीन समझता है और प्रकृति के वश में रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है वह ऊपर ऊपर उठता है, जो शास्त्रों के आदेश का पालन नहीं करेगा वो नीचे नीचे जाएगा। तो जीवात्मा इस जगत में फंसा हुआ है प्रकृति के तीन गुणों में। जैसे वो शास्त्र से समझता है, संबंध ज्ञान प्राप्त करता है, तो फिर उसका ऊंचे उठने का कार्य शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो भौतिक संसार भी है इसकी भी तुलना सागर के साथ की जाती है, और यहां पर भी कितने सारे कष्ट जीव को आते रहते हैं, उछलता रहता है अलग अलग कारणों में। इसके बाद ये एक समस्या के बाद दूसरा समस्या, और दूसरा समस्या के बाद तीसरी समस्या आती रहती है, उलझता ही रहता है वो। जैसे समुद्र में तरंगे आती रहती है और कभी खत्म होती नहीं है, वैसे इस संसार में भी तरंगे आती रहती है, अनर्थों की तरंगे आती रहती है। और यह संसार को दुखालय कहा गया है। जीव सुखी बनने का प्रयास करता है और फिर भी उसके जीवन में दुख आते रहता है। और दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक कुबुद्धि और सुबुद्धि। कुबुद्धि व्यक्ति को हमेशा गलत कार्य करने के लिए लगाती है और इस तरह दूषित कार्यों में लगाती है। हम देखते हैं कि इस जगत में लोग हमेशा दूषित कार्यों में लगे हुए रहते हैं प्रायः, और कलयुग में तो ज्यादातर ज्यादा लोग गलत कार्यों में लगे हैं। उनको अगर बोले भी कि अगर अच्छा कार्य करो, ये कार्य करने से आप नरक में जाओगे, तो लोग बोलते हैं नरक किसने देखा है, ऐसा रहता है उनको। भगवान के बारे में बोले तो भगवान किसने देखा है, तो हर चीज देखना चाहते हैं। अगर बोलेंगे अगर आपको इस संसार में नरक दिखता नहीं क्या, कोई व्यक्ति अपाहिज है, उसको दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है, और कितने सारे समस्या है, यानी ये व्यक्ति शराब पी के गटर में पड़ा है, आपको लगता नहीं कि वो नरक में है करके, तो भी विश्वास करते नहीं है। तो इस तरह लोग दुर्बुद्धि कुबुद्धि के ही शरण में रहते हैं। और हम बोलेंगे कि ये पुस्तक लीजिए, आप ये ग्रंथ लीजिए, इससे आपको सुबुद्धि मिलेंगी, ये आपको भगवान की ओर जाने के लिए मदद करेंगे, ये आपको अच्छे कार्य करने के लिए मदद करेंगे, नहीं है, समय नहीं। ओह, समाचार पत्र पढ़ रहा है उसके लिए समय है, लेकिन ये अच्छे ग्रंथ जो हमें सुबुद्धि देने वाले हैं वो नहीं पढ़ेंगे लोग। तो इस कलयुग में लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है और हमेशा दुर्बुद्धि और इसके पीछे ही लगे रहते हैं। तो कई बार लोगों को आनंद लेने की इच्छा होती है, मेले में जाते हैं। प्रभु जी अपना उदाहरण दे रहे थे कि बचपन में वो अपने कुछ मित्रों के साथ जब बचपन गए थे मेले में, तो उन्होंने वहां पर मेले में एक जायंट व्हील, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं जो भी आप सब जानते हैं, जायंट व्हील जा ऊपर नीचे है ना, तो उसमें बच्चे बैठते हैं, कई बार रोते भी है लेकिन फिर भी बैठने की इच्छा करते हैं। तो जिनके साथ गए थे, वरिष्ठों के साथ, कोई रिश्तेदार थे या माता पिता थे, तो उनको हट किया उन्होंने कि हम सबको इसमें बैठना है। तो बोले नहीं नहीं इसमें नहीं बैठो, बैठेंगे तो आप डर जाएंगे और फिर आपको इधर से गिरने की इच्छा होगी। लेकिन रोजी बोले नहीं हमको बैठना है। तो फिर वरिष्ठ लोग उनको लेके बैठे, सब बच्चे बैठ गए। तो जब वो जायंट व्हील ऊपर जा रहा था तो आनंद आ रहा था, तो जैसे ऊपर जाता था आनंद आता है, लेकिन जैसे नीचे आता है वो तो डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, है ना। तो मैं भी एक बार बैठा था, तो जब नीचे आ रहा था तो बहुत डर लग रहा था, पक्का ऐसे पकड़ के रखा था कि गिर ना जाए। तो इसकी तुलना कैसे की जाती है कि जब जीव स्वर्गलोक की ओर जाता है तो उसको आनंद आता है, अभी स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर कई सारे अवसर आए हैं, वहां पर नंदन कानन है और वहां पर बहुत बड़ा लंबा आयु है और बहुत खाने के लिए, तो देखते हैं कि वहां पर लोग घी से ही खाते हैं, शुद्ध घी, यहाँ सब डुप्लीकेट घी है। जब उर्वशी भी बोलती पुनर्वास से कि यहाँ पर मुझे घी से बनाया हुआ खिलाओ, हम लोग स्वर्ग के हैं, हम घी में ही खाते, तो उसको आनंद आता है स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि स्वर्ग में हम लोग तो वहां पर तो नित्य वास नहीं होता है, जितना वो व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है उतना साल तक उधर रहने को होता है, और जस्ट पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम, तो यहां पर आना पड़ता है। जैसे वो नीचे आता है और पाप कर्म करने के कारण उसको लगता है कि मुझे नरक में जाना है, नरक में जाना होगा, तो फिर वो दुखी हो जाता है। वो जो व्हील जायंट व्हील नीचे आता है तो दुख लगता है, तो व्यक्ति देखता है कि अभी नरक में जाना है, उधर बड़े 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 लोग दुखी है, वहां पर बड़ी बड़ी कढ़ाई है, उसमें उसको फ्राई कर रहे हैं या उसको अग्नि में डाला जा रहा है, उसे टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, तो बड़ा नरक की ओर जाते हुए बड़ा दुख लगता है। तो ऐसा ये प्रकृति के गुण में रहने से जीव कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरक में जाता है, उसका ये चक्र चलता ही रहता है। कभी तथाकथित सुख में रहता है तो कभी कभी तथाकथित दुख भोगते रहता है। इस प्रकार जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है वह अपने ही कारण से प्रकृति के गुणों द्वारा उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अतः मानव समाज को जीवन के वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए जिनका सार भगवद गीता में उपलब्ध है, अन्यथा भौतिक संसार में ही जीवन बिताना होगा। मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। क्रमिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है तो उससे आशा की जाती है कि वह वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि अनादि काल से जीव अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति जन्य त्रय तापों को सहता आ रहा है। यह प्रवृत्ति भगवान के प्रति विद्रोह के कारण विद्रोह करने की भावना है। श्री कृष्ण ने भी भगवद्गीता में इसकी पुष्टि की है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश के रूप में है, बद्ध जीवन के कारण उन्हें मन समेत अपनी 6 इंद्रियों से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो यही है, इस संसार में जीव अपने आप को भौतिक शरीर समझता है और बहुत सारे अपने आप को इंद्रिय मन ये समझता रहता है, और इंद्रियों का कार्य कुछ तो कार्य करते रहना है। तो मूर्ख लोग इस संसार को भोगने का प्रयास करते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि ये संसार क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, और इस संसार को भोगने का ही उद्देश्य रखते हैं। तो एक उदाहरण आता है कि एक चोर को किले में रखा गया, जेल में रखा गया है, किले में रखा गया, तो हम देखते हैं कि जेल में बड़ा कष्ट रहता है। हमेशा चोर जो भी होता है वो जेल में जाने के बाद, कारागृह में जाने के बाद, वहां से निकलने का ही प्रयास करता है। तो वो किला था और वो किले में केवल एक ही दरवाजा था और उसमें भी ये व्यक्ति अंधा था और उसमें उसको फंसाया गया था और बड़ा तकलीफ हो रहा था उसको। तो वो घूम रहा है, घूमते घूमते जैसे ही वो दरवाजे के पास आता था उसको थोड़ा सा कुछ खुजली हो जाती थी, है ना। तो हाथ लगा लगा के आता था तो जैसे दरवाजे के पास आता था उसको खुजली हो जाती थी, फिर वो दरवाजे से निकल के और घूमता था। तो कहा जाता है कि बाकी जो योनियां है जो को प्राप्त होती है वो अज्ञान की योनियां है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, यहां से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, कुछ भी ज्ञान नहीं, अज्ञान में पड़े हुए। लेकिन जब सौभाग्यवश उसको क्रमिक रूप से मनुष्य जन्म मिल जाता है तो उससे वो बाहर निकल सकता है, शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, साधु संतों का संग कर सकता है और मुक्त होने का प्रयास कर सकता है। तो ये मनुष्य जीवन है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जब वो फिर भी वही जो पशु की योनि में जो इंद्रिय भोग कर रहा था उसी तरह के इंद्रिय भोग में लग जाता है, उसको कहा जाता है खुजली होना। खुजली का मतलब है इंद्रिय तृप्ति की भावना रखना। अभी मनुष्य जीवन मिला है तो अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। शास्त्र कहता है कि जितना आवश्यक है उतनी इंद्रिय तृप्ति आप कर सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति करना वो खुजली करने जैसा है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर खुजली हो रही तो ज्यादा खुजवाओ मत, क्योंकि वो रोग बढ़ जाएगा। अब प्राणियों को बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, वो कुछ भी कार्य करेंगे, लेकिन मनुष्य को अगर बोला जाता है ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होकर भी व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता है तो फिर पुनः वो उसी गर्त में गिर जाता है, पुनः उसे उसी पशु योनियों में और अलग अलग योनियों में डाला जाता है। तो शास्त्र हमें बताता है कि मनुष्य योनि में आने के बाद व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए। अब देखो, भगवान ने 400,000 मनुष्यों के सामने 80,00,000 ये पशुओं की योनि, प्राणियों की योनि, कीट पतंग की योनि रखी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो समझेगा कि अगर आज तो मुझे मनुष्य जीवन में बहुत सारी सुविधा प्राप्त है, मुझे खाने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सोने के लिए नहीं है, और बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त हो गई है और मैं थोड़ा सुख जीवन प्राप्त कर रहा हूं, पशु योनि में कितना दुख है। आप देखिए, अगर 10 कुत्ते है उसको एक चपाती फेंको तो 10 के 10 गिर जाते हैं और जिसको प्राप्त हो जाती है उसको नोचते है। ये पशुओं नहीं, एक 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 रोटी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो इतना दुख है, और आदमी तो उसको तो आराम से मिल जाती है चीजें। तो ये चीजें हमें देखना चाहिए कि ये लोग कितना संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। तो क्या अगर मैं अभी ऐसा बन सकता हूं, सज्जन को पूछना चाहिए कि इस प्रकार का जीवन क्यों प्राप्त होता है। तो ये शास्त्र में दिया है कि जो मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी जीवन जीते हैं उनको इस प्रकार दंड के रूप में ये योनियां प्राप्त होती है। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि यार इन लोगों को तो कुछ काम नहीं है, ऑफिस में जाना नहीं है, अच्छा है कि मैं ऐसा ही बन जाऊं, तो ये मूर्ख है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सज्जन है, समझदार है, वो समझेगा कि मुझे इस तरह का जीवन नहीं जीना है। अभी देखिए, आज तो कम से कम कलयुग में व्यक्ति एक मनुष्य दूसरे को जिंदा नहीं खा रहा है, इतने सारे नियम है, कानून है, बहुत कुछ है। मनुष्य प्राणियों को खा रहा है लेकिन एक मनुष्य दूसरे को नहीं खा रहा है। तो देखिए पशुओं की कितनी दुर्दशा है कि बाकी मनुष्य भी और बाकी प्राणी भी उनको जिंदा खा लेते हैं, है ना। उधर वो खड़ा है व्यक्ति, उसके सामने पता नहीं उसको जिंदा ही मारना पड़ेगा। एक पानी के अंदर एक बड़ी मछली छोटी मंदी को जिंदा ही निकल लेती है, एक बड़ा पंछी छोटे पंछी को या बड़े बड़े छोटे छोटे जीवों को जिंदा ही खा लेता है। तो ये दुर्दशा है। तो ये मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए, मुझे 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 मुक्त होना है, मुझे भगवान के पास जाना है। तो फिर उसको पूछना चाहिए। और इस तरह की जब तीव्र इच्छा व्यक्ति के मन में आती है तो परमात्मा के रूप में भगवान उसको मदद करते हैं। भगवान तो उसी के लिए राह देख रहे हैं। 80,00,000 योनियों में तो भगवान को केवल बस उनके जीवन उनके साथ रहना है और कुछ करना नहीं है। लेकिन जैसे मनुष्य जीवन में जब जीव मनुष्य का अपना शरीर प्राप्त करता है तो परमात्मा को थोड़ी आशा हो जाती है कि अभी सुधरेगा, अभी सुधरेगा, इन सबका दुख देख के तो सुधरेगा, और कोई सुधर जाता है और इच्छा तीव्र इच्छा करता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे इस दुख से निकलना है, तो भगवान फिर ऐसे व्यक्ति को किसी हरे कृष्ण भक्तों से मिला देते। फिर वो व्यक्ति पुस्तक लेके आता है और फिर पढ़ता है, अपना जीवन सुधार देते। प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कॉलेज के लड़कों का। जब कॉलेज में लड़के फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बड़े अच्छे रहते हैं, उनमें कुछ ज्यादा बुरे गुण नहीं होते हैं, तो फिर वो बुरी संगत में गिर जाते हैं। जो सीनियर बच्चे होते हैं उनको बुरी आदत लगा देते हैं, तुमको ये हम जैसे बिगड़े हैं आपको भी बिगड़ना पड़ेगा, नहीं बिगड़ेंगे तो उनको धमकी देते हैं, तो फिर उनको बोलते हैं ऐसा कार्य करो, ये गलत कार्य करो वगैरह वगैरह, तो उनमें वो भी फंस जाता है। तो एक दिन फिर हरे कृष्ण का एक भक्त, एक स्टूडेंट उधर आ जाता है पुस्तक लेके, भगवद गीता लेके, तो सीनियर बच्चे बोलते अरे इसको स्पर्श नहीं करने का, ये हरे कृष्ण वाले तुमको बिगाड़ देंगे, नहीं तुम ऐसे ही रहो। तो व्यक्ति उसको बोलता है नहीं नहीं ये पुस्तक बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें दी है, आपको पढ़ना चाहिए, फिर आप दुख से निकल जाओगे। तो ये थोड़ा अच्छा परिवार से व्यक्ति लड़का था, तो वो बाद में बोलता है मैं बाद में लूंगा, तो बाद में उस लड़के को मिलके उससे पुस्तक ले लेता है। फिर वो पुस्तक पढ़ने लगता है, उसमें से उसको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है और फिर वह इसमें आ जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। तो यह है, अगर हम इच्छा करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो हमारी इच्छा के ऊपर बहुत डिपेंड है। तो बुरी संगत में रहेंगे तो हमारी बुरी इच्छाएं आती रहेंगी, अच्छे संग में आएंगे तो हम अच्छी इच्छाएं आएंगी, ये स्वभाव ही है। जैसा हम संग करेंगे वैसे ही हम चीज प्राप्त करते हैं। तो जैसे व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो भक्त उसको गीता के बारे में बताता है, फिर उसको बताते हरिनाम करना चाहिए, हरिनाम करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर हमारे मन में बुरी वासना नहीं आएंगी, और फिर उसको माला देते हैं और फिर वो माला जप करना शुरू कर देता है। तो माला जप करते करते ये माला जो है ये माया से निकलने का बड़ा एक शक्तिशाली तरीका है। जैसे माया हमारे ऊपर ये प्रभाव करती है या अपना बल दिखाती है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के संग में हमारा माला जब हरिनाम अच्छा होता है, लेकिन फिर भी गुणों का प्रभाव है, तो जैसे ही तमोगुण का प्रभाव आ जाता है हम लोग सो जाते हैं, माला करते करते सो जाते हैं, फिर रजोगुण का प्रभाव आता है तो मन घूमता रहता है अलग अलग जगह, और सत्वगुण में रहते हैं तो बहुत अच्छे से जप होता है। तो इस तरह इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि हम लोग सत्वगुण में सुबह सुबह उठकर भगवान का दर्शन करने के बाद सब भक्तों के साथ में हरिनाम के बारे में, हरिनाम की महिमा सुनने के बाद हम हरिनाम जप करने के लिए बैठते तो हमारा जप बहुत सुंदर होता है। लेकिन कुछ कुछ माला रह जाती है, हम दिन में हमारी सेवा में लग जाते हैं, कभी दोपहर को कभी शाम में हाथ में माला लेते हैं तो बड़ा कठिन जाता है माला लेने के लिए। कई लोग वो लगता हो कि आप अपना अनुभव बता रहे, तो मेरा अनुभव है कि कई बार शाम के समय जब बड़ा कठिन जाता है। तो इस तरह जब हम हरिनाम के संपर्क में आ जाते हैं, भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो कई बार हम लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं जीवन में, मतलब हम जो छोटा रास्ता है उधर से जाएंगे, बड़ा रास्ता को छोड़ देंगे। तो उदाहरण दिया जाता है कि कॉलेज में जाने के लिए एक छोटा रास्ता था एक बड़ा रास्ता था, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। शॉर्टकट से जाएंगे तो एक बीच में घर है, उस घर के सामने एक बड़ा कुत्ता बैठा रहेगा, अभी कभी वो सोता भी है लेकिन उड़ गया तो पीछे लगेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग तो शॉर्टकट में जाएंगे, देखते हैं कुत्ता सोता रहेगा, लेकिन अगर कुत्ता उड़ गया तो पीछे लग जाएगा। तो ये शॉर्टकट मतलब इंद्रियतत्व का मार्ग है, इंद्रियतत्व में धोखा है। कई लोगों को लगता है कि नहीं हम इंद्रियतत्व करेंगे हमको आनंद मिलेगा, लेकिन लॉन्ग कट जो है भक्ति का मार्ग, उसमें बहुत सारे विधि विधान है, नियम है, कानून है, लेकिन वो मार्ग क्या है, सुरक्षित है ना। तो सुरक्षित मार्ग को व्यक्ति को धारण करना चाहिए, अगर हम असुरक्षित मार्ग को पकड़ेंगे तो धोखा है, समस्या हो सकती है। तो ऐसे ही इंद्रदुति की इच्छा करते करते जो आनंद की खोज में रहता है, प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। तो दो बच्चे एक भाई और बहन घर में रहते हैं, तो घर में हम देखते हैं कि माता पिता हमेशा बच्चों के पीछे लगे रहते, पढ़ाई करो, स्कूल में जाओ, अच्छा कार्य करो, खेलो ज्यादा मत खेलो, तो हमेशा माता पिता ये सोचते रहते कि बच्चे का अच्छा कल्याण हो। लेकिन बच्चों की इच्छा क्या रहती है, हम लोग ज्यादा ज्यादा खेले, कम से कम पढ़ाई करे और ज्यादा ज्यादा खेले। तो एक बार वो भाई बहन, मुझे नाम बताया था, हैंसल और ग्रेटर, हैंसल और ग्रेटर, तो ये दो दो भाई बहन माता पिता को बोले हम लोग घर से निकल जाते हैं, जंगल में जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो आनंद मिलेगा हमको। तो रात को 12 बजे जब माता पिता सो जाते हैं तब उठते हैं, तो भाई बहन बोलते हैं हम चलो जंगल में जाएंगे, जंगल में आनंद आएगा हमको। तो जाते रहते आनंद, जाते रहते तो रात में तो सब जंगल के प्राणी बाहर निकलते हैं, शेर चीता बाघ सब निकलते हैं। तो सब भाई बड़ा रहता है, बहन छोटी रहती है, तो बहन बोलती है अरे हम कहाँ आ गए, या तो शेर का चीते का आवाज आ रहा है। तो भाई बोलता है रुको रुको हम, मैं इधर पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, हम कुछ देखेंगे। तो भाई पेड़ के ऊपर चढ़ता है, दूर से उसको देखता है एक झोपड़ी है, और झोपड़ी कैसी है विशेष है, वो केक से बनी हुई है, पूरा केक से बनी हुई है, और झोपड़ी के ऊपर जो छत है उसके ऊपर क्रीम लगाया हुआ है, चेरी लगा हुआ है उसके ऊपर। तो भाई बोलता है नीचे उतरता है, अरे उधर से एक झोपड़ी है, और झोपड़ी भी कैसी है, साधारण नहीं है, केक से बनी हुई है, क्रीम है चेरी है। तो बोले चलो चलो जाते हैं उधर। तो जाके वो झोपड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और चढ़ के मस्त क्रीम खाने लग जाते हैं, चेरी क्रीम खाने लग जाते हैं। तो वो चढ़ते खाते खाते वो झोपड़ी को फिर वो छिद्र हो जाता है ना, छिद्र हो जाता है। तो नीचे देखते हैं एक चुड़ैल है, चुड़ैल का वर्णन हम तो देखा नहीं है, चुड़ैल के बारे में सुना है, जैसे पुतना को कहा जाता है चुड़ैल थी वो खेचरी थी वो। तो चुड़ैल बड़ी बूढ़ी रहती है वो जनरली, और बड़ी विचित्र रहते देखने के लिए है ना, उसके बड़े बड़े दांत रहते हैं, काली काली रहती है। तो नीचे उन्होंने देखा बच्चों ने, वो चुड़ैल है और बोल भी रही है कि बच्चों अभी केक खाओ, मैं तुमको अभी मैं खाने वाली हूँ। तो बड़े बड़ा कढ़ाई था है ना, उसमें तेल था, वो गर्म कर रही थी, तो बोल भी रही थी कि हाँ तुम केक खाते हो, मैं कढ़ाई में तुमको तलने वाली हूँ और फिर फ्राई करके खाने वाली हूँ। बच्चे डर गए, तो बोले अरे तो हम तो फ्राई हो जाएंगे, हम कहाँ जंगल में आ गए अब। तो उधर से उधर छलांग लगाते झोपड़ी से और भाग जाते, बोलते बच्चे रुके रुको, वो रुकने वाले नहीं है, और हंस रही थी लेकिन भाग गए। तो बड़े अरे बच गए आज है ना, हम माता पिता के संरक्षण में कितना सुरक्षित है, ये चुड़ैल तो हमको खाने वाली थी। तो हम उदाहरण, प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि ये माता पिता कौन है, राधा कृष्ण हमारे माता पिता है, लेकिन हम उनका संग छोड़कर इंद्रदूति में लग जाते हैं है ना। ये केक खाना मतलब क्या है, इंद्रदूति करना है। माता पिता हमको बोलते हैं शास्त्र के अनुसार इंद्रदूति मत करो, जितनी आवश्यक उतनी ही करो है ना। और दूसरा वो जंगल, जंगल क्या है, भौतिक जगत, हम आध्यात्मिक जगत को छोड़ के इस जंगल रूपी भौतिक जगत में आ गए और केक खाने का प्रयास कर रहे हैं। और चुड़ैल कौन है, वो माया देवी है, माया देवी। और वो कढ़ाई, और कढ़ाई में जो गरम गरम तेल, वो क्या है, प्रकृति के तीन गुण है, यानी माया जीव को प्रकृति के तीन गुणों के अंदर रहकर पूरा फ्राई कर रही है, पूरा तल रही है उसके अंदर और दुख दे रही है। तो यहां पर वर्णन आता है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, अतः उसे इस संसार के त्रय तापों में डाले जाने के कोई कारण नहीं है, किंतु जीव अपने ही झूठे ही अपने को झूठा ही भोक्ता मानकर स्वेच्छा से इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। उसे इस भयावह स्थिति से बचाने के लिए ही भगवान ने व्यासदेव का अवतार लेकर सारा वैदिक साहित्य प्रदान किया है। इसलिए कहा गया है कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारे दुख। श्री कृष्ण को भुलाने के कारण जीव अनादि काल से भौतिकतावादी बन गया है, अतः श्री कृष्ण की माया उसे जगत में नाना प्रकार से कष्ट दे रही है। तो कृष्ण को भूलकर जीव इधर संसार में आता है और फिर माया यहां पर उसको अनेक प्रकार के कष्ट देती है। तो क्या माया हमारी दुश्मन है, नहीं, माया भगवान की एक बहुत ही आज्ञाकारी सेविका है, और भगवान ने उनको सेवा दिया है कि जो जीव उनकी शरणागत शरण में नहीं जाएंगे उनको एक तीन ताप देना है। तीन ताप क्यों देना है, कि ये बताने के लिए संसार दुखमय है, ये संसार जीवों के रहने के लायक नहीं है, यहां पर उनको सुख मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये तीन ताप देने के कारण जीव सोचता है कि मैं इधर क्यों आया, अभी कोई सुख सुख का कोई मार्ग है क्या। तो फिर वो शास्त्र का आधार लेकर भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान के धाम के बारे में श्रवण करता है, और भगवान के धाम के बारे में श्रवण जब करता है तो फिर भगवत धाम जाने की इच्छा रखता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जीवों का दुख देखकर माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद बुरान। तो ये जो जीव जो माया में बद्ध है, मुग्ध है, उसके पास कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा करके ये वेद और पुराण दिए है। 18 पुराण है, 108 उपनिषद है और इतने सारा शास्त्र है। किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए है ना, मनुष्य इसका आधार ले सकता है और अपना मन भी उसमें लगा सकता है। इसमें कितनी कितनी सारी कहानियां है और कितना विशेष विशेष प्रकार का ज्ञान दिया है जिससे वो इससे बाहर निकल सकता है। तो ये माया से बाहर निकलने का एक ही तरीका है जो कि है शास्त्र का अध्ययन करना है। शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति आसानी से बाहर निकल सकता है। जब जीव माया द्वारा मुग्ध कर लिया जाता है तो उसकी कृष्ण चेतना पुनर्जीवित नहीं हो पाती। ऐसे परिस्थिति में कृष्ण ने कृपा करके 4 वेद तथा 18 पुराण प्रदान किए हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा वह मनमाने कार्य करेगा और बिना किसी मार्गदर्शन के रह जाएगा। इस श्लोक में मानारूढ़ शब्द भी महत्वपूर्ण है। महान विचारक तथा वैज्ञानिक बनने के बहाने विश्व भर के लोग मानसिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अभक्त होते हैं क्योंकि वे प्रथम जीव ब्रह्मा जी को भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करते। इसलिए भागवत का कथन है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथेना सती धावतो बही। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वह बौद्धिक स्तर पर कार्य करने के कारण सुपात्र नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने ज्ञान का मानक बदलना पड़ता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक दार्शनिक दूसरे से सहमत नहीं होता और एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के सर्वथा विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है। इसका एकमात्र कारण ज्ञान के किसी मानक या आदर्श के बिना मानसिक स्तर पर काम करते रहना है, किंतु वैदिक आदेशों में ज्ञान का मानक स्वीकृत है। भले ही कभी कभी कथन परस्पर विरोधी लगेंगे, चूंकि वेद ज्ञान के मानक है अतः भले ही विरोधी लगे किंतु उन्हें मानना चाहिए। यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर भवबंधन में पड़े रहना होता है। तो वेद वे हमारे मानक ग्रंथ है, आदर्श ग्रंथ है, स्टैंडर्ड हमको दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो अलग लोग अलग अलग प्रकार का स्टैंडर्ड बनाएंगे। कोई बोलेंगे कि नहीं रास्ते से इस ओर जाना चाहिए, कोई बोलेगा रास्ते के उर जाना चाहिए। लेकिन फिर सरकार ने एक स्टैंडर्ड बनाया है ना, कीप लेफ्ट, आपको दाएं बाजू से जाना है। सारे उस देश के सब लोगों को एक ही स्टैंडर्ड है ना, ये करना है ये नहीं करना है। तो शास्त्र ने हमको एक स्टैंडर्ड या मानक या आदर्श दिया है, उसके जैसा ही चलना है। तो प्रभुपाद जी बोलते कि कभी कभी वेदों के कथन परस्पर विरोधी हो सकते हैं लेकिन फिर भी हमें उन्हें मानना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप कि हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी मल के ऊपर हमारा पैर गिर जाता है तो हमें तुरंत स्नान करना होता है ना, शास्त्र बताता है कि मल से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। लेकिन गाय का जो गोबर है वो पवित्र है, गाय के गोबर के ऊपर पैर पड़ा तो हमको स्नान करने की जरूरत नहीं है। श्री राधा कृष्ण की और श्री प्रभुपाद की जय। तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे ये कैसा है, किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी प्राणी के मल के ऊपर हमारा पैर गिरता है तो हमें स्नान करना पड़ता है, लेकिन गाय का गोबर के ऊपर अगर हम पैर गिरते तो हमारा स्नान करने की जरूरत नहीं है। तो ये वेद है। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मण जो कि बहुत शुद्ध होता है वो स्नान करके आचमन करके आता है और गाय का गोबर को स्पर्श करता है और ऐसे गाय के गोबर से गोमूत्र से परम शुद्ध भगवान का अभिषेक किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि ये शास्त्र में दिया गया है कि गाय के गोबर से गोमूत्र से भगवान का अभिषेक किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि गांव में लोग हमेशा गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं, गोबर के कितने कंडे बनाते हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में रहना है उस घर का लेपन भी करते हैं। अभी अभी वैज्ञानिक ने शोधन किया है कि जो गोबर है उसमें एंटीसेप्टिक तत्व है वो करना चाहिए, लेकिन भारत के लोग हजारों करोड़ों साल से उसका उपयोग करने आ रहे हैं। ये अभी वैज्ञानिक कह रहे करके हम उसको उपयोग नहीं कर रहे, वेदों में कहा गया है इसका हम उपयोग कर रहे हैं। दूसरा बात कहा जाता है कि किसी प्राणी की हड्डी को अगर हम स्पर्श करते हैं तो तुरंत हम स्नान कर लेना चाहिए, वो एक विधान है। लेकिन जो शंख है जो अल्टर में रखा गया है वो भी किसी प्राणी की हड्डी है, लेकिन हम आचमन करने के बाद उसको स्पर्श करते हैं, इतना पवित्र है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि शंख पवित्र है, उसी शंख से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। तो वेदों के जो बातें हैं वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, वही हमारे लिए मानक है, और उसको हमें लेते हुए चलना चाहिए, तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित चलेगा, नहीं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो वेद हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इंद्रिय तृप्ति क्या है, ये पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, हमने कई बार इसको भोगने का प्रयास किया है लेकिन अभी भी इच्छा बनी है कि नहीं और मुझे कुछ, मैं इंद्रिय भोग करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा और हमें कुछ भोग मिलेगा तो आनंद मिलेगा। जैसे हम जाते हैं रास्ते में देखते हैं गन्ने का दुकान है, वो व्यक्ति गन्ने से रस निकालता है, पहले निकालता था बहुत रस निकालता है, दूसरी बार तीसरी बार पूरा उसका एक बूंद भी उसमें रखता नहीं है, बाद में उसको फेंक देता है ना। तो यह शास्त्र बताता है कि इंद्रियों भी ऐसा ही है कि हमने कई बार इसको भोगा है, उसमें हमको आनंद मिला नहीं, फिर हम और अलग अलग प्रकार के शरीर लेके इधर आए हैं, क्योंकि हमको आनंद मिला नहीं है, हमारी इच्छा बनी रही। तो भगवान ने बोला कि आप इतना भोग करने के बाद भी आपके हृदय में भौतिक इच्छा है तो फिर और एक शरीर ले लो, और एक शरीर ले लो। इतनी जीव इतना इच्छा बना के रखता है कि भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर उसके लिए रखे है। भगवान की इतनी कृपा है कि आप भोगने का प्रयास करो, आपको लगता है कि इस शरीर में जाने के बाद मुझे अच्छा भोग मिलेगा तो ये ले लो, उस शरीर में जाने के बाद भोग लेगा तो वो ले लो। वही प्रवृत्ति मनुष्य जीवन में दिखती है कि लोग अलग अलग प्रकार के कार्य लेते हैं, मुझे इस कार से लाभ आनंद मिलेगा, नहीं नहीं दूसरी कार से मिलेगा, लेकिन कार बदलने से आनंद बदलने वाला नहीं, वही आनंद मिलने वाला है। और वो जो भौतिक आनंद है वो नियंत्रित है, वो सीमित है। इसलिए जीव अलग अलग प्रकार की इच्छा करते रहता है, दुख भोगते रहता है। तो ये भौतिक आनंद तो है ही नहीं, वो तथाकथित है, वो मानना है। कई बार ये बताया जाता है कि एक दुख और दो दुखों के बीच में जो गैप है वही तथाकथित भौतिक जगत का सुख या आनंद है। कई बार लोग डरे रहते हैं, अभी एक दुख चला गया, अभी दूसरा कब आता है ना। दूसरा दुख आने तक जो पीरियड रहता है उसी को लोग सुख मान लेते हैं, सुख है ही नहीं है जगत में, दुख से भरा हुआ है। क्यों दुख से भरा हुआ है, क्योंकि बद्ध जीव अलग अलग प्रकार के पाप कर्म करता है, पाप से दुख आता है, पाप करने से पाप करने की प्रवृत्ति आती है और पाप करने की प्रवृत्ति से वो पाप करता है और फिर ये दुख की श्रृंखला चलती रहती है और ये अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण ही पाप करने की प्रवृत्ति आती है। जब तक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं आएगा तब तक उसका पाप करने का प्रवृत्ति जाएगा ही नहीं, ज्ञान आने के बाद पाप करने की प्रवृत्ति जाती है और फिर उसके जीवन में थोड़ा सुख आने लगता है। तो ये बातें शास्त्र में कही गई है। और आध्यात्मिक आनंद बड़ा मतलब अमर्यादित है, असीमित है। देखो देवताओं की पूजा करने वाले लोग हमेशा अलग अलग पूजा में लगे रहते हैं, उसको आनंद आता ही नहीं। तो ध्रुव महाराज है वो भगवान की सेवा में लग गए थे, अभी 5 साल के थे। अगर भगवान की भक्ति करते करते अगर उनको आनंद नहीं आता तो जंगल छोड़ के घर में आ जाते थे, अरे कुछ आनंद नहीं है इसमें, चलो अभी घर चले जाते। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की नारद मुनि के मार्गदर्शन में तो तुरंत उनको बहुत आनंद आने लग गया जंगल में। हालांकि जंगल में तो बड़ा विचित्र वर्ण होता है, शेर होते, हाथी होते, अलग प्रकार के प्राणी होते, लेकिन उनको भगवान में इतना आनंद आने लगा और भगवान से इतना संरक्षण उनको प्राप्त होने लगा कि जंगल में ही रहे। और उसके बाद 6 महीने के बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान बोले क्या चाहिए आपको। इनके हृदय में तो इतनी बड़ी लालसा थी कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करने की लालसा थी, लेकिन 6 महीने के अंदर तीव्र भक्ति करने के कारण वो पूरी भौतिक वासना लालसा शुद्ध हो गई। और भगवान सामने आने के बाद बोल रहे थे भगवान क्या है आप मुझे प्राप्त हो गए, आप तो एक हीरे के समान हो, मैं तो बहुत सारी भौतिक इच्छा लेके आया था जो कि कांच के टुकड़े के समान थी, अभी मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, अभी आप मुझे मिल गए, आप हीरे के समान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने बोला कि चिंता मत करो, मेरा नाम खराब हो जाएगा, आपको मेरी प्राप्ति होगी और आपको जो चाहिए भगवत जो बड़ा साम्राज्य वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि भगवान फंसाते नहीं है। ध्रुव महाराज को भगवान ने उनका जो चाहिए था वो इच्छा भी पूरी की और भगवान ने उनको स्पेशल वरदान दिया कि ये सब करते हुए मेरा विस्मरण तुम्हें कभी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। हम प्रयास करते हैं भगवान को नहीं भूलने का लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन ध्रुव को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम कभी नहीं भूलोगे। तो ध्रुव महाराज को वो जो चाहिए था वो भी भौतिक लाभ भी मिल गया, बड़ा साम्राज्य मिल गया, साथ ही साथ मृत्यु के बाद उनको भगवान का धाम भी मिल गया। ये ऐसा लाभ कहीं नहीं मिलने वाला। देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोग बोलेंगे ठीक है हमारे लोक में आ जाओ, आपका जितना पुण्य है उतना भोगने के बाद आपको वापिस जाना पड़ेगा, आप कितना भी रोगोगे धोगे तो देवता उधर रखने के लिए बाध्य नहीं होते, बोलते नहीं और बाकी लोग भी लाइन में है अभी जाओ आप, है ना, आप और मेरी पूजा करने के बाद हो सकता है आप आ जाओ। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। और भगवान की भक्ति करने के लिए ज्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। देवताओं की यज्ञ करने के लिए बड़ा मोटा बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, अमीर लोग कर सकते हैं, लेकिन भक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कितना भी गरीब व्यक्ति हो तो चार चीजें प्राप्त कर सकता है, केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे ये कार्य करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि महाराज प्राचीन परिषद को यही उपदेश दे रहे हैं कि आपको ये मनमाना कार्य नहीं करना चाहिए। आप जो सकाम कर्म में लगे हुए इसका जो परिणाम है ये दुख में परिणित होने वाला है। जितने पशु की बलि आप दे रहे हैं इस यज्ञ में है वो सब पशु आपको भेदने वाले हैं, आपको काटने वाले हैं, तो आप संभल जाइए। ये पूरा का पूरा जो प्रवचन है एक्चुअली नारद मुनि महाराज प्रश्न परिषद को दे रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से सारे मानव समाज को दे रहे हैं। ये केवल प्रवचन महाराज प्रश्न परिषद के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए। क्योंकि नारद मुनि ज्यादा खुश हो गए थे कि महाराज जी के 10 बेटे तो अभी भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनको शिवजी का महाजन का संग मिला है, वो तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो पिताजी को क्यों बचाना है, पिताजी को भगवत धाम जाना चाहिए। इसलिए नारद मुनि कृपा करके महाराज प्रश्न परिषद के पास आकर उनको ये दिव्य विज्ञान कह रहे हैं। ये जीवात्मा की कहानी है और जीवात्मा इस भौतिक जगत में किस तरह फंसता है क्या करता है, लेकिन बहुत सुंदर है। कोई एक साधारण व्यक्ति भी इस कहानी को पढ़ने लगेगा ना वो पूरा पढ़ेगा और पूरा पढ़ने के बाद लाभ उठाएगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम, उनका उद्देश्य एक ही है श्रीमद् भागवतम का कि जीव को इस भौतिक संसार के दुखमय संसार के निकालकर उसे भगवान की शरणागति देना है और उसे अंतिमतः आध्यात्मिक जगत में लेकर जाकर पूरी तरह उसको सुखी बनाना है और फिर वहां से वापस आना नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है। और श्रीमद् भागवतम की महिमा में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का पठन अध्ययन करने से पुराणों के 400,000 जो श्लोक है उसका अध्ययन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर रोज बैठकर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का अध्ययन करते हैं और 400,000 श्लोक का अध्ययन हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय।